सुप्रभात.
गुड मॉर्निंग.
इट इज गुड टू बी टुगेदर.
और यहाँ पे इकट्ठे होना अच्छा है आपके साथ.
लेट्स गो अहेड एंड टर्न टू हिब्रूज चैप्टर 8.
और इब्रानी की किताब उसके 8 अध्याय हम निकालेंगे.
I hope that what we have been studying has been a blessing to you as it has been to me.
और मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले दिनों में हम लोग जो शिक्षा लिए वो आपके लिए और मेरे लिए वो आशीष का कारण है हुआ है.
So someone please read chapter 8. We'll start in Uriya this time and then go to Hindi the next time.
Hindi. କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଯାଜକ ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅତେ ଏହି ମହାଯାଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଯେବେ ପୃଥିବୀରେ ଥାନ୍ତେ ତାହା ଏହି ଯାଜକ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ଏପରି ଯାଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାର ସେବା କରନ୍ତି ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଛାୟା ମାତ୍ର ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ମଶା ଯେପରି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସାବଧାନ ପର୍ବତରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତଦନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେହି ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ସେବକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯଦି ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କଥା ଉଠିନଥାନ୍ତା ଯେଣୁ ସେ ସେଥିରେ ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦେଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯେଉଁ ଫଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲୁ ଏହା ତଦନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ ଯେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ନିୟମରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରୁନାହିଁ ଏହା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏହି ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହା ଏହି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ସବୁ ଲେଖିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା ସେମାନେ ଆମ ଲୋକ ହେବେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାସୀକୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ ଯେଣୁ ସାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜାଣିବେ କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନାହିଁ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମକୁ ପୁରାତନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପୁରାତନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଅଛି ତାହାର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବାର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ
So the writer of Hebrews begins in verse 1.
और इब्रानी का लेखक यहाँ पे एक आयत में कहते हैं.
Now the things we have spoken, this is the sum.
और जो जो बातें हम जिसके बारे में बात किए वो पुत्र है.
So we've spoken about a lot of things through 7 chapters, haven't we?
और ये 7 अध्याय में 1 से 7 अध्याय में हम बहुत सारे बातों को देखे.
And the details are important for our faith.
और जो उसका मूल विषय है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है.
Therefore our understanding and our growth in the knowledge and the love of our Lord Jesus Christ.
जैसे कि हम प्रभु के लिए ज्ञान में प्रेम में हम लोग बढ़ सके.
But he's not going to rewrite the first 7 chapters.
और वो लेकिन वो और एक बार वो सात एक से सात चैप्टर को नहीं लिख रहा है.
He's going to review it for us as we focus on the new covenant.
परंतु वो जैसे कि हम एक नए वाचा की ओर बढ़ रहे हैं, वो हमें कुछ चीजों को याद दिला रहा है वो.
And in doing so, we might notice a few things that we hadn't noticed before.
और आप ध्यान दे सकते हैं जो एक से सात अध्याय के अंदर जो जो चीजों को हम नहीं देखे उससे कहीं बेहतर थोड़ा अभी यहाँ पे देखेंगे.
But as we hear the same things again, it reinforces the truth of it.
परंतु जो देखी हुई बातों में कुछ कुछ चीजों को हम दोहराएंगे.
With the new covenant, we need a high priest.
और ये नई वाचा में नया नियम में हमें हमारा एक महायाजक है.
And he says we have such a high priest who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens.
और वो कह रहा है कि हमारा ऐसा एक महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है.
So when he says that, he wants you to remember everything we talked about with Melchizedek.
और वो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम याद करें कि जो जो बातें हम मलकीसेदक के बारे में देखे.
He wants you to remember the things we talked about with Levi.
और वो याद दिलाना चाहता है कि लेवी के बारे में जो जो हम चीजों को देखे.
About why the priesthood of Melchizedek is greater than the priesthood of Levi.
और क्यों मलकीसेदक की वो जाजक पद लेवी के जाजक पद से बेहतर है.
But you have to remember that not only is he our high priest, he is also our king.
और आपको ये याद रखना जरूरी है, वो खाली हमारा महायाजक नहीं है परंतु हमारा राजा भी है.
Just like Melchizedek was a king and a priest.
जैसे मलकीसेदक एक याजक भी था और एक राजा भी था.
But not only is our king and our priest those things.
और यहाँ पे खाली वो याजक और राजा नहीं है हमारा, वो
He is our prophet.
वो हमारा नबी भी है.
He is our apostle.
वो हमारा प्रेरित भी है.
He is the one that has been sent from God in heaven.
वो व्यक्ति है जो स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हमारे लिए.
In fact, he is the second person of the Trinity.
और सही रीति से अगर देखते हैं, वो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है.
Made higher than the angels.
और स्वर्ग दूतों से ऊपर किया गया.
Sorry, not made, but was higher than the angels.
और स्वर्ग दूतों से वो हमेशा ऊपर है.
And but he became lower than the angels.
परंतु वो स्वर्ग दूतों से थोड़ा नीचे किया
गया.
उसके दुख भोग के द्वारा, ताड़ना के द्वारा, मृत्यु हुए भोग के द्वारा हमारे लिए.
And remember that he had to be the God-man.
और इसलिए याद रखना है कि वो परमेश्वर और इंसान दोनों हैं.
Remember that statement, the hypostatic union.
और वो hypostatic संघ के बारे में थोड़ा याद करें.
He had to be fully man.
और उसको पूरा पूरा इंसान या मनुष्य होना है.
And he had to be fully God.
और पूरा पूरी परमेश्वर भी होना है.
If he wasn't fully man, the ladder doesn't go low enough for us to reach.
अगर वो पूरा पूरी इंसान नहीं होता तो वो सीढ़ी के बारे में जो कल हम बात किए थे वो नीचे नहीं आता.
If he wasn't fully God, the ladder doesn't go high enough to us to attain.
अगर वो परमेश्वर या ईश्वर नहीं होता तो सीढ़ी ऊपर भी नहीं जाता.
That's why he can be the only mediator.
इसीलिए वो ही एकमात्र मध्यस्थी है.
And he is now set on the right hand of the Majesty on high.
वो अभी वो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन के दाहिने ओर बैठा है.
You'll notice that's the exact same thing that's said about him in chapter 1.
और आप यही चीज को एक अध्याय में जो लिखा हुआ है देख सकते हैं.
After in verse 3, after he has purged our sins.
और लिखा जाता है तीन आयत में कि वो हमारे पापों को धोने के बाद.
He has sat down on the right hand of the Majesty on high.
वो महामहिम के सिंहासन को उसके दाहिने ओर जा बैठा.
He has accomplished our redemption.
वो हमारे मुक्ति को कर चुका है, दे चुका है.
It is sure because it's in the hand of our prophet, priest, and king.
ये सही में हो चुका है क्योंकि ये हमारा राजा, हमारा नबी, हमारा याजक में, याजक के हाथ में है.
There are going to be more things that he says about that in chapter 10 and in chapter 12.
और कई सारे ज्यादा विषय को वो कहना चाहता है जो 10 और 11 में हम लोग पढ़ेंगे.
But remember the most quoted verse in the New Testament from the Old.
और परंतु याद रखिए जो उक्ति को पुराना नियम से ज्यादा लिया गया नया नियम में.
Psalm 110 verse 1.
भजन संहिता 110 उसका 1.
The Lord said to my Lord, sit down at my right hand until I make thine enemies thy
footstool. और प्रभु मेरे प्रभु को कहा कि जब तक तेरे शत्रुओं को तेरे नीचे मैं ना ला दूं, मेरे जा मेरे दाहिने ओर तू जाके बैठ.
Christ is seated at the right hand of the Father until his enemies are his footstool.
और यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने ओर बैठे हैं जब तक पिता उनके शत्रुओं को उनके पैरों के नीचे नहीं ले आते.
That's who we have as a high priest.
और वो ऐसा ही हमारा एक महायाजक हैं.
And the writer of Hebrews wants that in our mind continually as we move forward.
और हर समय ये इब्रानियों पुस्तक के लेखक ये चीज को हमारे मन में ध्यान में रखने के लिए चाहते हैं.
So that we don't forget who it is.
और ताकि हम ना भूले कि वो कौन है.
But not just who it is, but where he is.
और वो कौन है वो खाली नहीं लेकिन वो कहां से है उसको भी याद करना है.
And because of who he is and where he is.
और वो कौन है और कहां से है कहां पे है.
What he's doing on our behalf.
तब जाने कि वो हमारे लिए आपके लिए वो क्या किया.
That he ever lives to make intercession for his people.
वो अभी भी हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर रहे हैं.
And so in verse 2 he says he's a minister of the sanctuary.
और इसीलिए दूसरा आयत में लिखा जाता है कि वो सच्चे तंबू का सेवक हुआ.
And of the true tabernacle.
और सच्चे तंबू का.
Which the Lord pitched and not man.
और जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बरन प्रभु ने खड़ा किया था.
Remember what we said about the writer of Hebrews sort of introducing a topic and then moving past it.
आप याद कीजिए कि इब्रानी के लेखक कुछ टॉपिक के बारे में कुछ हमें देता है जानने के लिए फिर वो अलग बात को फिर कहता है.
And then he'll mention it again and then move past it.
और फिर उसे लाता है फिर वो आगे बढ़ता है.
And then he'll finally tell us about what he wanted to show us.
और शेष में वो क्या कहना चाहता है उसी चीज को वो लाता है.
He's doing it again in verse 2.
और यहां पे वो दूसरा आयत में वही चीज कर रहा है.
He's comparing the earthly with the heavenly.
वो यहाँ पे जो पृथ्वी में था तंबू और जो स्वर्गीय तंबू उसी की और वो दोनों को साथ तुलना कर रहा है.
It's what he's been doing through the whole book.
और जो एक ये पुस्तक में जो एक किया गया है.
He's pointing out man being below the angels.
वो कह रहा है कि इंसान जो स्वर्ग दूतों के नीचे.
He's pointing out the comparison between Moses and Christ.
वो मूसा और यीशु मसीह के साथ तुलना किया.
He's pointing out the comparison of the Levitical priesthood versus Christ.
और मसीह के साथ उसकी याजक पद के साथ लेवी और उसके याजक पद को वो तुलना किया.
And he's not doing it to say any of those earthly things were bad.
और वो नहीं कह रहा है तुलना करने के करते समय नहीं कह रहा कि ये सब खराब है.
They were good and they served a purpose.
और परंतु ये अच्छे के लिए है कुछ उद्देश्य के लिए ही है.
But the heavenly is better.
परंतु जो स्वर्गीय है वो सबसे अच्छा है.
So we should ask ourselves.
इसलिए हम अब खुद को पूछना है.
What does he mean by the true sanctuary?
और जो सच्चा तंबू कह रहे हैं उसका मतलब क्या कहना चाहते हैं.
The true tabernacle.
और जो सच्चा तंबू.
Well, we're going to get more in chapter 9.
और 9 अध्याय में इसको ज्यादा बेहतर रूप से हम देखेंगे.
In verse 11 and 12.
और उसका 11 और 12 9 का 11 और 12.
He says, but go ahead and someone read those two verses.
आप कोई पढ़ सकते हैं 9 का 11 और 12.
परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है अर्थात इस दृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया.
Someone go ahead and read verse 24.
कोई 24 आयत को पढ़े.
कारण प्रकृत विषय और प्रतिरूप जे हस्तकृत महापवित्र स्थान सेठिरे खिष्ट प्रवेश न करी बर मानुमानक निमित्त
when we see in Isaiah chapter 6, we're not going to turn there, but you can write down that reference.
अभी नहीं निकालेंगे, परंतु जब यशायाह उसका 6 को हम लोग देखते हैं.
Where is he?
और वो कहाँ पे है परमेश्वर यीशु मसीह कहाँ पे है.
He's in heaven.
वो स्वर्ग में है.
And what does he see?
और वो क्या देख रहे हैं.
He sees a heavenly temple.
और यशा एक स्वर्गीय वो मंदिर को देख रहे हैं.
And he sees Christ seated upon the throne where the mercy seat would be.
और जहाँ पे दया का आसन है उसी के ऊपर यीशु मसीह को बैठते हुए वो देख रहे हैं.
In the holy of holies.
और जो महापवित्र स्थान है.
That's where he is.
और वहाँ पे वो रहता है.
And throughout this book,
और ये पूरे किताब में,
the writer of Hebrews is going to impress upon our minds a reality.
और जो सही है, जो वास्तव है, उसी के ऊपर गौर करने के लिए इब्रानियों के लेखक हमें चाहते हैं।
That just as Melchizedek was created in the language of scripture to give us a picture of Christ,
जैसे कि मलकीसदक को बनाया गया ताकि वो एक छवि जैसे हो यीशु मसीह के लिए।
The information is told us in such a way that it gives us that perfect picture.
और उसके बारे में जितना भी कहा गया, जैसे कि यीशु मसीह के साथ उसको तुलना किया गया।
That the tabernacle that was built by Moses.
और जो उसी तरह जो मूसा के द्वारा तंबू को बनाया गया।
Is the same exact thing.
वो वही चीज है।
You'll notice that it says that he was told to build it after the pattern that he was shown.
और आप यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे लिखा जाता है पहाड़ में उसको जिस रीति से दिखाया गया था उसी रीति से बनाने के लिए उसको कहा गया।
You see that in verse 5. Someone read verse 5 of chapter 8.
और 8 का उस 5 को आप पढ़ सकते हैं कोई?
वैसे में कि वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना।
Now we don't know when Moses was on the mount.
और हमें पता नहीं कि मूसा जब पहाड़ के ऊपर था,
If God gave him a vision of the heavenly temple.
हो सकता है प्रभु परमेश्वर मूसा को एक स्वर्गीय तंबू का एक दर्शन दिए होंगे।
Or if God said, "This is the architectural design of what I have in heaven."
और हो सकता है मैं जो तंबू आप तुम्हें बनाने के लिए कह रहा हूँ, ये उसका डिजाइन है, ऐसे डिजाइन दिए होंगे।
But we know for sure from this verse.
परंतु ये आयत के द्वारा हम जान सकते हैं।
That Moses was told by God to make sure he made the tabernacle exactly as he had seen it.
लेकिन मूसा को परमेश्वर ने कहा कि उसको जैसे दिखाया गया नमूना, उस नमूना के अनुसार वो पृथ्वी में एक तंबू बनाए।
Exactly as God had showed him.
जैसे परमेश्वर ने उसे दिखाया उसी तरह।
That's exactly what Moses was supposed to do.
और उसी तरह मूसा को वैसे ही करना था जैसे परमेश्वर ने उसे पहाड़ के ऊपर दिखाया।
That's what he says in Exodus chapter 25 and verse 40.
और निर्गमन उसका
25
का 40 को हम देखते हैं।
And look that thou make them after their pattern which was showed thee in the mount.
और कोई पढ़े 25 का 40 को?
सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है।
Right now he's talking about the tabernacle.
और यहाँ पे अभी वो तंबू के बारे में कह रहे हैं।
In the beginning of chapter 9 he's going to talk about the furniture of the tabernacle.
और 9 अध्याय के प्रारंभ में वो तंबू के अंदर जो जो चीज रहा करता था उसी के बारे में वो कह रहा है।
There in Exodus 25 he's saying make sure you make it all after the pattern.
और उसी वहाँ पे इसीलिए वो कहा निर्गमन 25 में तुम्हें जैसे दिखाया गया उसी के अनुसार तुम्हें बनाना है।
So when we think of the tabernacle that Moses built,
और जब हम सोचते हैं जो मूसा के द्वारा तंबू बनाया गया,
that house that he was faithful in chapter 3,
और वो कैसे वो 3 अध्याय में वो कैसे विश्वस्त ठहरा,
Solomon built the temple based off the pattern that Moses had.
और मूसा ने जैसे बनाया था उसी के ऊपर आधार करकर सुलेमान ने मंदिर बनाया।
And when Zerubbabel built the temple after the exile,
और जैसे बंदवाई के बाद यरूबाबिल ने जैसे मंदिर बनाया,
he built it after the pattern of Solomon's temple.
और सुलेमान के मंदिर को देखकर उसे उसके नमूना को देखकर यरूबाबिल ने बनाया।
So that every one of them was based off of the pattern that Moses had in the mount.
और इसीलिए जितने भी सारे बना है वो मूसा के तंबू के नमूना को देखकर बना है।
Now, when you make things, when you're making multiple things that are supposed to be identical,
और जो सही पहचान वाला चीज है उसको जब आप एक बार दो बार ऐसे बनाते हैं,
there's a danger.
हो सकता है वहां पे एक आपदा है।
So, my task in building the beds.
और मेरा जो कार्यभार है वो सब खाट बनाने के लिए
was to cut the wood to length.
और उसी तरह उसी चौड़ाई लंबाई में मुझे क्या करना है, लकड़ी को काटना है।
And just so you know, sometimes those were changed.
और हो सकता है आप जान सकते हैं कभी कभार ये चेंज भी हो सकता है, यानी कब लंबा हो जाता है, कभी चौड़ा हो जाता है.
What I would do is I would take a piece of wood and measure it to the right size.
लेकिन मुझे क्या करना है, मैं ऐसा एक सही लकड़ी लूंगा, उसको नापूंगा.
And I cut that piece of wood.
और उसी हिसाब से मैं उसको काटूंगा.
I make sure it's the right size.
और मैं मुझे सही रीति से यह पता चलना चाहिए कि यह सही है वो डिजाइन.
And then I would take that and write pattern on it.
और मैं उसको लूंगा और जो जो चीज मुझे लिखना है वहां पे मैं लिखूंगा.
So that every subsequent piece of wood I didn't have to actually measure anymore.
और इसीलिए मैं मुझे सारे चीज को नापना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक लकड़ी को नापते उसी के अनुसार मैं सबको काटूंगा.
I would take my pattern and I'd lay it upon the new piece of wood.
और एक नए लकड़ी को मैं लाऊंगा और जो मैं पहले काटा था उसको उसी हिसाब से नापूंगा.
I'd make sure they were the same length at the end and I'd draw a line.
और मैं देखूंगा उसका लंबाई कितना है, उसी हिसाब से मैं एक लाइन खींचूंगा.
And that was my place to cut.
और उसके बाद मैं काट दूंगा उसे.
It would be foolish of me.
और ये मेरे लिए या foolishness हो सकता है.
To take the first one as my pattern.
और मुझे मूर्खता हो सकता है कि मैं मेरा पहला हुआ काटा हुआ चीज को लेके फिर से
and cut the first piece of wood,
और पहले उसे काटूंगा वो लकड़ी को
and take my pattern and put it over there to be used,
और वही काटा हुआ लकड़ी को लेके पहले मैं उसे इस्तेमाल करूंगा
and say, take my second piece of wood and then use it for the next,
और उसके बाद दूसरा लूंगा फिर उसको नाप के फिर मुझे काटना पड़ेगा उसको जाके फिर इस्तेमाल करूंगा.
The more you do carpentry,
अगर आप ज्यादा ये लकड़ी का काम करने वाले हैं
or any job where you are making multiple things of the same thing,
और उसी अनुसार और कोई भी काम को अगर बार-बार आपको करना है,
you know that by the time you're finished,
और आपको पता लग जाएगा कि जब तक आप खत्म करेंगे,
if you haven't used that correct pattern,
अगर वही नमूना को आप सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते,
but you measured piece by piece by piece as you go,
परंतु आप वही चीज को बार-बार दोहरा रहे हैं,
the final piece will be much different than that pattern.
हो सकता है जो आखिरी का लकड़ी होगा, हो सकता है वो पहले वाला लकड़ी से ना मिले उसका,
because I might have cut the second piece of wood just a little bit bigger than the first one.
हो सकता है जो दूसरा वाला लकड़ी में पहले वाला लकड़ी को अच्छी तरह काटा, हो सकता है दूसरा वाला लकड़ी थोड़ा सा बड़ा हो जाए.
And that means that every subsequent piece is going to be a little bit bigger.
हो सकता है उसके बाद जितना भी मैं लकड़ी काटूं थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो जाए.
And then later on it won't all fit together.
तभी बाद में क्या होगा, कुछ भी सही रीति से नहीं आएगा.
So Moses was told to make the tabernacle after the pattern he was shown.
इसलिए मूसा को कहा गया कि जैसे उसको दिखाया गया पहाड़ के ऊपर उसी तरह वो तंबू को बनाए.
So when Solomon built the temple,
और जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया,
the key parts of the temple were identical to the tabernacle.
और जो मूल चीज सब था मंदिर का, वो सब वो नमूने के हिसाब से ही होना था.
The holy place was exactly the same as it was in the tabernacle, the same size.
वो आवास की तंबू में जो महापवित्र स्थान था उसका लंबाई चौड़ाई उसी तरह सुलेमान ने बनाया.
Had the same furniture.
और वही यानी लकड़ी को इस्तेमाल करके चीजों को इस्तेमाल करके.
The holy of holies was the same size.
और वो महापवित्र स्थान का वही जगह वही इसी हिसाब से होना था.
And had the same furniture.
और वही चीजों को लेके.
And Solomon built around that grand buildings.
और उसके चारों ओर सुलेमान एक बड़ा इमारत को बनाया.
Ornamented pillars.
और बहुत सारे ऐसे सोने चांदी और जवाहरात को लगाया.
He wanted to make it grander than the tabernacle had looked.
और आवास तंबू जैसा था उससे वो और अच्छा सुंदर बेहतर बनाया.
But the meat, the functional part of that building was identical.
परंतु याद रखिए जो जो चीज वहां पे लागू हो रहा था, काम हो रहा था, वो उसी तरह है जैसे कि आवास की तंबू में था.
And when that had been destroyed and they built the temple of Zerubbabel,
और जब सुलेमान का मंदिर को नाश किया गया और यरुबाबिल ने मंदिर को बनाया,
they didn't have the privilege of the money that Solomon had.
और उनके पास उतना पैसा नहीं था जितना सुलेमान के पास था और सुलेमान जैसे बनाया था मंदिर.
So it was the same size as the tabernacle.
इसीलिए पहला वाला आवास की तंबू की तरह ये यरुबाबिल ने मंदिर बनाया उसी तरह.
And those that were still alive that were so old that remembered the size of Solomon's temple.
और जो लोग नहीं मरे थे तब तक जिंदा थे वो लोग याद किए कि सुलेमान का मंदिर इनका साइज क्या है और ये लोग उसी हिसाब से किए.
They wept because of the difference.
और वो लोग रोए क्योंकि मंदिर में थोड़ा इधर उधर का लंबाई चौड़ाई में इधर उधर अंतर हो गया.
They thought Solomon's temple was so glorious.
और वो सोच रहे थे कि सुलेमान का जो मंदिर महिमा का मंदिर हो रहा था.
And Zerubbabel's temple is so small.
और यरुब्बाबेल जो मंदिर बना हुआ है बहुत छोटा है.
But they missed the key point.
परंतु एक वो एक सही चीज को खो दिए.
The holy place and the holy of holies were exactly the same.
और महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान वो सही जितना लंबाई चौड़ाई रहना था उसी हिसाब से ही था.
Because they were built after the pattern that was shown Moses on the mount.
क्योंकि वे लोग मूसा को जैसे दिखाया गया था उसी के नमूने के ऊपर आधार करके बनाए थे.
By the time that Jesus comes and he's walking on the earth in his ministry,
और जब तक यीशु आया और पृथ्वी में चला फिरा किया और अपना सेवकाई को किया,
the temple is no longer called Zerubbabel's temple.
और यरुब्बाबेल का मंदिर जो यरुब्बाबेल बनाया था उसको यरुब्बाबेल का मंदिर तभी कहा नहीं गया.
It's called Herod's temple.
ये हेरोद का मंदिर कहा गया.
Herod didn't tear down Zerubbabel's temple.
और हेरोद ने जो है वो यरुब्बाबेल के मंदिर को नहीं तोड़ा.
But he added rooms and columns and things like Solomon had done.
परंतु कुछ जोड़ने लगा जैसे खंबा हो जैसे कि rooms हो वैसा कुछ जोड़ने लगा.
So that on the outside it looked as grand as Solomon's did.
और इसीलिए बाहरी रूप में जैसे सुलेमान का मंदिर दिख रहा था वैसे ये वाला भी दिखने लगा.
But the heart of it was exactly the same as the tabernacle.
परंतु जो अंदर जो चीज था जैसे कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान वो वैसा ही था जैसे मूसा ने बनाया था.
Because that's exactly what God told Moses to do.
कि मूसा को परमेश्वर ने यही चीज कहने के लिए कहा करने के लिए कहा जो उसको दिखाया गया था.
And so what we see on earth or what we could have seen on earth,
और जो हम पृथ्वी में देख सकते हैं,
if we were alive to see the tabernacle,
अगर हम जिंदा होते तो हम आवास की तंबू देखते,
or Solomon's or Zerubbabel's or Herod's temple,
और सुलेमान का मंदिर, यरुब्बाबेल का मंदिर और हेरोद का मंदिर को देख पाते,
was a reflection of what was true in heaven.
और ये क्या है? एक प्रतिबिंब है जो स्वर्ग में है उस तंबू का.
It is the place where Christ dwells.
और ये वो जगह है जहाँ पे यीशु मसीह रहते हैं.
And the great thing about it is it's not man-made.
और ये सबसे अचंभा करने वाला बात है कि इसे कोई इंसान ने नहीं बनाया.
What happened to the tabernacle?
और ये पृथ्वी में जो आवास तंबू था उसके बारे में क्या क्या हुआ उसके साथ?
We don't know.
हमें पता नहीं.
We don't know what they did when they said, "Okay, we built the temple. The tabernacle is no longer necessary."
और जब उनको पता नहीं, हमें पता नहीं कि जब वो मंदिर बनाए, सोचे हुए होंगे कि अभी आवास की तंबू का जरूरत नहीं है.
But I can tell you that after 500 years, the cloth, the fabric that was used for the tabernacle. Would have worn thin.
और लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब आवास के तंबू में जो इस्तेमाल होने वाली कपड़ा होता था, हो सकता है 500 साल के बाद वो पुराना होके चिर यानी फट गए होंगे.
From the wind and from the rain and from the frequency of use.
और बार-बार उसे इस्तेमाल करने के बाद और बारिश के लिए और हवा के लिए हो सकता है पुराने होके फट गए होंगे.
The reason that's true is because it's man-made.
क्योंकि ये सच हो सकता है क्योंकि ये इंसान के द्वारा बनाया गया तंबू था.
Everything that man makes will eventually crumble.
और जितना भी इंसान ने बनाया पृथ्वी में सारा चीज ऐसा ही होगा.
It doesn't matter how solid it seems.
इसका मतलब ये नहीं ये कितना अच्छा दिख रहा है.
Imagine the joy when they would have seen the frailty of the tabernacle compared to the solidity of Solomon's temple.
और आप सोचिए याद कीजिए जैसे वो कितना आनंदित हुए होंगे जब वो आवास की तंबू और सुलेमान का तंबू को तुलना करते हुए उनके सुंदरता को देखते हुए.
He spared no expense.
और वो उतना यानी कीमती था सुलेमान का तंबू.
He said there's nothing that I won't give for God's house.
और सुलेमान कह रहा है कि ऐसा मेरे पास और कुछ नहीं जो परमेश्वर के लिए मैं ला सकूं सब कुछ वो दिए.
What happened to Solomon's temple?
लेकिन सुलेमान का मंदिर के साथ क्या हुआ?
When Nebuchadnezzar comes, every stone is taken apart.
जब नबूकदनेस्सर आया सारा वो सोने चांदी जैसा जितना भी अनमोल चीज था सबको ले गया.
We're told that no two stones were left together.
और हमको कहा गया कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा.
And so then we have Zerubbabel's temple.
और इसीलिए हमारे पास यरुब्बाबेल का मंदिर फिर आया.
And when Herod comes to please the Jews, he builds that temple even grander.
जब यहूदियों को खुश करने वो आया इसलिए उनके लिए ये मंदिर को फिर वो बनाया.
And the Jews were so proud of that building.
और इसीलिए यहूदी लोग वो इमारत को लेके बहुत यानी मन में गर्व करते थे.
The oaths that they took, they swore by the temple.
और जो शपथ को लेते थे वो मंदिर को लेके शपथ लेते थे.
But what happened to it?
लेकिन उसके साथ में क्या हुआ?
In 70 AD, the Romans came.
और 70 मसीह में परमेश्वर यानी रोमी आए.
And they destroyed it.
और वो नाश कर दिए.
We're told that there were no two stones left together.
हमको कहा गया कि एक पत्थर के ऊपर दो और एक पत्थर नहीं रहेगा.
But our tabernacle,
और हमारा आवास की तंबू,
our heaven,
जो हमारा स्वर्ग,
the true sanctuary,
और जो सही में जो पवित्र स्थान है,
is not like the earthly,
और पृथ्वी में जो है उसके जैसा नहीं है.
So there is a contrast.
और यहाँ पे कुछ सोचने वाला विपरीत चीज है.
In verse 4 we're told that the Mosaic tabernacle was on earth.
और चार आयत में हमें कहा जाता है कि मूसा की आवास तंबू जो पृथ्वी में था.
But where does our high priest dwell serving?
और जहाँ पे हमारा महायाजक जो यहाँ पे यानी सेवा देते हैं यीशु मसीह.
He's in heaven in verse 1.
वो स्वर्ग में है.
In verse 1 of chapter 9, it's an earthly sanctuary.
और 9 के 1 में लिखा जाता है जो तंबू पृथ्वी में था और पृथ्वी का तंबू था.
It's set up by man in verse 2.
और 2 में लिखा जाता है कि इंसान के द्वारा बनाया गया था.
It's made with men's hands.
और इंसानों के हाथों के द्वारा बनाया गया था.
In chapter 9 verse 11, it's of this creation.
और उसका 11 आयत में लिखा जाता है. Chapter 9 verse 11, no?
Yes, yes.
हाँ.
It's of cloth and it's of stone.
और ये कपड़ा का था या पत्थर का था.
As we're told in verse 24 of chapter 9, it's made with hands.
और 24 में हमें कहा जाता है जैसे कि कुछ एक ऐसा तंबू था जो इंसानों के द्वारा बना नहीं गया.
When the same verse we're told it's a copy.
और एक जगह कहा जाता है ये उसका प्रतिबिंब था.
In verse 5 of chapter 8, it's a shadow.
और 8 का 5 में ये कहा जाता है ये एक छाई परछाई था.
Is my shadow on this wall the real me?
और जो परछाई ये दीवार पे इनका है ये क्या वो ओरिजिनल है?
It has my outline.
ये हो सकता है उनका एक प्रतिबिंब है.
It follows my pattern.
हो सकता है वो उसी तरह वो यानी फॉलो कर सकता है.
But it's not the real me.
परंतु ये सच्चाई नहीं है. सच्चाई ये है.
The same way the tabernacle on earth and the temples that were built were not the real thing.
उसी तरह पृथ्वी में जो आवास के तंबू और मंदिर को बनाया गया वो सच्चाई नहीं था परंतु सच्चाई स्वर्ग का तंबू है.
Because our high priest is in heaven seated upon the throne.
क्योंकि हमारा जो महायाजक वो स्वर्ग में है और परमेश्वर के सिंहासन के अदायगी और बैठे हैं.
It's set up by the Lord in verse 2.
और 2 में लिखा जाता है ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया.
He's the one that built it.
अब वो वही व्यक्ति है जो बनाया है स्वर्ग का तंबू को.
In verse 11 of chapter 9, it is not made with hands, it's not of this creation.
और लिखा जाता है कि अब ये जो तंबू है ये कोई इंसान के द्वारा और बनाया नहीं गया सृष्टि का नहीं है.
You can ask me what it's made out of.
और आप मुझे पूछ सकते हैं ये कैसे बनाया गया किन किन चीजों से बनाया गया है.
And I have a simple answer for you.
और अब मेरे पास एक साधारण उत्तर है आपके लिए.
I don't have a clue.
और मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि स्वर्ग का तंबू किन किन चीजों से बनाया गया.
God is the builder, not man.
परमेश्वर जो वहां पे उसको बनाया है कोई इंसान नहीं.
He's built it with whatever he wants to build it with.
और वो वहां पे उसी को कैसे बनाया वो जो चाहिए था उसको उसी हिसाब से बनाया है.
So in verse 2 it's called the true sanctuary, the true tabernacle.
और इसीलिए 2 आयत में लिखा जाता है कि वो सच्चा तंबू.
In verse 11 of chapter 9 it is the greater and more perfect tent.
और लिखा जाता है 9 का 11 में ये सबसे बड़े और सिद्ध तंबू है.
Why? Because it's the pattern that was used.
क्यों? क्योंकि ये वो नमूना है जिसको वो यहाँ पे पृथ्वी में फॉलो किया गया.
It's what everything else was based upon.
और उसके आधार पर उसके ऊपर आधार करके ये सब चीजें नीचे बनाया गया.
And that's where our high priest serves.
और ये वहाँ पे हमारा महायाजक जहाँ रहते हैं.
That's where he is.
और वो वहाँ पे रहते हैं.
He is serving for us.
वो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं.
Look at verse 3 and 4. Someone read those.
और 3 और 4 को कोई हमारे लिए पढ़ दे. 8 क्या 3 और 4.
कारण प्रत्येक महाजाजक दान और बलि उभय उच्चर्ग करिबाकु निजुक्त होंति अतएव एही महाजाजकंकर मध्य उच्चर्ग करिबा निमन्ते किछि थिबा आवश्यक
You see, the priests here had to have something to give.
और यहाँ पे आप देखिए जो याजक है उसको कुछ देना पड़ रहा था.
It was dependent upon the people.
और ये लोगों के ऊपर आधारित था.
So you can imagine the situation.
आप वो अवस्था को थोड़ा जांचिए.
Say I am the high priest.
और सोचिए कि मैं वो महायाजक हूँ.
And our brother is another priest.
और मेरा भाई जो और एक याजक है.
And we get up in the morning and we're sitting at the tabernacle waiting for people to come.
और हम दो सुबह उठे और हम आवास के तंबू में हम पास बैठे हुए हैं और लोगों का अपेक्षा कर रहे हैं लोग आए.
And there may be a day where we have to perform 100 sacrifices.
और हो सकता है वहाँ पे एक दिन में हमको 100 बलिदान करना पड़ रहा है.
There might be a day where we have to perform 1,000 sacrifices.
और एक ऐसा भी दिन आ रहा है जहाँ पे हमें यानी 1,000 बलिदान भी करना पड़ रहा है.
And there might be a day where we perform none.
और एक ऐसा भी दिन आ रहा है जहाँ पे एक भी बलिदान नहीं करना पड़ रहा है.
You see, we don't have anything to offer.
और हमको देखिए यहाँ पे हमको कुछ देना नहीं पड़ रहा है.
If we were the high priests in Israel.
और हम इज़राइल में जो महायाजक अभी हैं.
Until the people brought their sacrifices.
जब तक कि लोग अपना बलिदान को नहीं लाते हैं.
They need to bring their sin offering.
और उनको उनके पाप के लिए बलि लाना है.
They need to bring their heave offering.
और उनके जो फसल की वो बलि लाना है धन्यवाद का बलि.
They need to bring their thanks offerings.
उनको धन्यवाद का बलि लाना है उनके पास.
It was dependent upon the people.
ये लोगों के ऊपर आधारित निर्भर करता था.
So for us to actually be of service to God and the people, we had to have something to do.
और इसीलिए हमें जो लोगों के लिए और परमेश्वर के बीच में रह के सेवा करना है हमें कुछ करना पड़ेगा.
So without the people having a heart towards God, we were useless.
और लोगों के बिना हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है.
But Christ is different.
लेकिन यीशु मसीह कुछ अलग हैं.
He says, if he were on earth, he'd be unnecessary because there were other priests to do that job.
अगर वो पृथ्वी में होते तो वो याजक नहीं होते क्योंकि दूसरा याजक थे पृथ्वी में.
But again, he's introducing something new.
परंतु यहाँ पे एक नई चीज को हमारे सामने ला रहे हैं.
It's necessary that this man has to have something to offer.
हाँ, इसीलिए उसको कुछ चीज को उसको बलिदान करना होता ये आवश्यकता था.
And as we go into the further chapters, chapter 9 and chapter 10.
और 9 और 10 को जब हम अध्याय को जाएंगे,
he's going to talk about that offering.
और वो कौन सा बलिदान है वो उस बलिदान के बारे में वहाँ पे कह रहे हैं.
It's an offering we all should be familiar with.
और हम ये बलिदान को हम सब लोग भली भांति जानते हैं.
Because it's the sacrifice of himself.
और ये बलिदान क्या है वो खुद का बलिदान किया.
It's our redemption.
वो हमारे मुक्ति के लिए किया.
But there's a massive difference, isn't there?
परंतु यहाँ पे एक बड़ा अंतर है.
Because as the high priest, we might stand here waiting and waiting for you to come.
और यहाँ पे महायाजक होने के नाते अगर हम हैं महायाजक तो लोगों को अपेक्षा कर रहे हैं जब तक वो नहीं आते हैं हम बलि नहीं चढ़ा पाएंगे.
And we might have someone come today.
और एक दिन में एक कोई आता है.
And the same person come tomorrow.
हो सकता है वो व्यक्ति कल भी आए.
And the same person come Friday.
वो शुक्रवार को वही व्यक्ति फिर बलि लेके आए.
And every day we accept their sacrifice.
और हर दिन उनके बलिदान को हमको ग्रहण करना पड़ रहा है.
But he's only made one sacrifice.
परंतु आप जानते हैं यीशु मसीह एक ही बलिदान किया.
His sacrifice isn't one that has to be repeated.
और उसका जो बलिदान और बार-बार दोहराना नहीं पड़ा.
Turn over to Revelation chapter 5.
और प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय को निकालेंगे.
In Revelation chapter 5, John is seeing a heavenly vision.
और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में यूहन्ना एक स्वर्गीय दर्शन को देख रहे हैं.
And he says, and I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll.
वो कह रहे हैं कि मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी.
And it was sealed with 7 seals.
और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी.
And there was a strong angel who said, who's worthy to open the seals?
और एक बलवंत स्वर्गदूत को वो देखा वो कह रहा है ऊंचे सबसे कि कौन ये पुस्तक को खोलने का उसके मोहर तोड़ने के लिए योग्य है.
And to open the book.
और ये पुस्तक को खोलने के लिए
He says no one was found.
और वो सुना कि कोई भी नहीं आया वो पुस्तक को खोलने के लिए किसी को भी नहीं मिला
There was no man in heaven, there was no man in earth, there was no man under the earth.
स्वर्ग में पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो उस पुस्तक को खोल सके
It was impossible for us to open it.
और ये असंभव है हमारे लिए कि उस पुस्तक को हम खोल पाए
and John starts to cry.
और इसीलिए यूहन्ना रोने लगा
Because here is this book that clearly needs to be opened.
और क्योंकि ये पुस्तक खोलना ही है उसे
But no one's found worthy to open it and read it.
परंतु कोई योग्य नहीं मिला ये पुस्तक को खोलने के लिए
And one of the elders says, John, stop crying.
और एक प्राचीन कहे कि वो खड़े होकर बोल रहे हैं
He says, the lion of the tribe of Judah has prevailed to open the scroll.
और वो यहूदा के सिंह जो हैं वो खोलने के लिए योग्य हैं
And to break the seals of it.
और जो मोहर को तोड़ेंगे
But when John turns to see,
और जब यूहन्ना मुड़कर देख रहा है,
when he turns to look at the one opening the scroll,
और जो वो पुस्तक को खोल रहा है, उसको वो देख रहा है,
he doesn't see the lion of the tribe of Judah.
और वो यहूदा के सिंह को नहीं देख रहे हैं.
What does he see?
वो क्या देख रहे हैं?
A lamb as it has been slain.
एक मेमना जो मारा गया था.
It was. Fresh wounds.
और उसके पास वो यानी ताजा खून उसके उसके ऊपर है.
Jesus doesn't have scars.
और यीशु के जो शरीर पर घाव नहीं थे.
He has wounds.
उसके उसके शरीर पर जो खून का जो लथपथ था वो ही था.
He has a glorified body, but those prints in his hand are not scars.
और उसके हाथों में जो छेद था वो छेद Pardon, please.
Those prints in his hands are not scars.
Okay.
No, sorry. They are still wounds. They're still fresh.
और वो जो घाव उसके हाथों के छेदे हुए हाथों में है, वो ताजा था.
I think that book is the book of our redemption.
और हो सकता है मैं सोचता हूँ जो किताब पुस्तक था, वो हमारा मुक्ति का पुस्तक था.
There's only one that can open that book, and he's the God-Man.
और एक ही व्यक्ति उसे खोल सकता है, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह.
But he made one sacrifice.
और क्यों? परंतु उसको एक ही बलिदान करना पड़ा.
And that sacrifice ever lives for us.
और वो जो बलिदान हमारे लिए सदा जीवित बलिदान हो गया
That should present a question in our mind.
और ये हमारे लिए हमारे मन में एक प्रश्न ला सकता है
If our high priest made one sacrifice,
अगर हमारा महायाजक एक ही बलिदान किया
then what's he doing the rest of the day?
बाकी दूसरे दिन में वो क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे होंगे
Because in the earthly tabernacle,
क्योंकि जब ये पृथ्वी के आवास स्तंभ में
If you didn't come with your sacrifices,
अगर आप जो लोग हैं वो अपने बलिदान के साथ नहीं आए
we'd sit down and put our feet up.
और हम ऐसे खड़े होके बैठ के हम लोग देख रहे हैं
We've got an easy day ahead of us.
और हमको एक आराम का दिन उसी दिन मिल गया
But not so with Christ.
लेकिन यीशु मसीह का साथ ऐसा नहीं हुआ
You see, we're told in verse 1 that he has sat down.
और एक में हमको कहा गया कि वो बैठा हुआ है
The sacrifice is complete.
वो बलिदान पूरा हो चुका है
There's not going to be another,
और दूसरा बलिदान नहीं
but he is still interceding on our behalf.
परंतु हमारे लिए हमेशा अभी प्रार्थना कर रहे हैं मध्यस्थी प्रार्थना
the work of sacrifice is finished.
और जो बलिदान का काम वो पूरा हो चुका है
but the work of our high priest is not.
परंतु हमारे महायाजक का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है
That's the greatness of who he is.
और ये उसका महानता है कि वो कौन है
That's why the Levitical priesthood could never be what his is.
और इसीलिए जो लेवी का याजक पद था वो और यीशु मसीह का याजक पद उसको हम तुलना करते हैं सही में उसका बेहतर है
As he's going to tell us later, that's why the blood of bulls and goats could never take away sin.
और नीचे जब हम देखेंगे कि बछड़ों बकरों का लहू खून उतना काफी नहीं था हमारे पाप को लेने के लिए
It was only the one sacrifice of our true high priest in the heavenly temple.
और ये स्वर्गीय तंबू में हमारा वही महायाजक का एक ही बलिदान काफी था हमारे पापों को धोने के लिए
इन द ट्रू सैंक्चुअरी
और वो सच्चा तंबू में
आई वांट यू टू थिंक अबाउट समथिंग
और कुछ इन चीजों के बारे में सोचने के लिए मैं चाहूंगा आपको.
We're told that the earthly tabernacle was made after the pattern in the mount.
और हमको ये कहा गया कि पहाड़ के ऊपर जैसे नमूना दिखाया गया था उसी के अनुसार नीचे जो तंबू था उसको बनाया गया.
Do you know the construction of the tabernacle?
और आप जानते हैं कि कैसे बनाया गया तंबू को?
Do you know the construction of the temple?
आप मंदिर को कैसे बनाया गया आप जानते हैं?
The tabernacle had this large sort of fenced area that was fenced with cloth.
और आवास के तंबू के चारों एक लंबा सा पर्दा होके कुछ कुछ खंबे लगा के वो चारों ओर रहता था.
That was the outer court.
और उसको बोलते हैं बाहरी प्रांगण.
It was the place where you or I would come and to bring our sacrifice.
और ये वो जगह है जो आप और मैं, आप जैसे और मेरे जैसे लोग आके वहाँ पे बलिदान को लाते हैं.
It's where we were allowed.
और उतना तक ही हमें जाने का अनुमति था.
And we'd give our sacrifice to one of the priests.
और एक याजक को हम अपना बलिदान वहाँ पे देते हैं.
And he'd take it to the brazen altar.
और वो क्या? वो बेदी को और वो बेदी के पास लेके जाता है.
The brazen altar sat in front of the tabernacle proper.
और आवास के तंबू के हम सामने ही वो बेदी पीतल का बेदी रहता था.
No priest could go into the tabernacle without going past the brazen altar.
और वो पीतल की बेदी को छोड़ के उसको पास करके कोई भी याजक पवित्र छोड़ के कोई भी याजक पवित्र स्थान को नहीं घुस पाता था.
This was to signify that it was only through the redemption found in the sacrifice of blood that we can enter the holy place.
ये दिखाता था कि लहू के बिना या खून के बिना हम परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जा सकते या पवित्र स्थान में नहीं जा सकते.
But the average Israelite was never allowed in the holy place.
और बहुत सारे इजरायली लोग को पवित्र स्थान में जाने के लिए अनुमति नहीं था.
The priest was allowed in there.
खाली वो याजक जाते थे.
And the high priest was allowed in there.
महायाजक जाते थे.
But not every priest all the time. Only certain ones at certain times.
परंतु हर याजक हमेशा नहीं जाते थे. कुछ कुछ याजक कुछ कुछ समय पे जाते थे.
They would enter into the holy place because there was the inner tabernacle was a large tent.
और जो अंदर का वो जो तंबू था जो पवित्र स्थान और उसी तार में कुछ कुछ याजक ही जाते थे.
It was a large rectangle.
और वहाँ पे एक चौड़ाई एक ऐसा एक घर था.
Longer than it was wide.
और जो लंबा था चौड़ाई से वो लंबा था.
And you would enter in into the holy place.
और आप जब पवित्र स्थान के अंदर घुसे.
And on the right hand would be the lampstand.
और आपके दाहिने और वो दीप वृक्ष था.
The only source of light in the holy place.
और वो पवित्र स्थान में वो ही है एकमात्र आधार जिसके जरिए आप देख सकते हैं उजियारा.
Besides the glow of the altar of incense.
और जो पीछे है वो है धूप बेदी. आगे जो है वो धूप बेदी.
That lampstand represents Christ.
और जो दीप वृक्ष है वो मसीह को दर्शाता है.
He's the light of the world.
वो ये दुनिया का ज्योति है, संसार का ज्योति है.
On the other hand, you had the table of showbread.
और दूसरे और जो है वो रोटी का टेबल था.
It was bread that had a certain recipe that had to be placed there on the table.
और यहाँ पे वो रोटी और कुछ चीजों को वहाँ पे रखा जाता था.
That bread wasn't there to feed God.
और वो रोटी वहाँ पे इसलिए रखा नहीं जाता था कि परमेश्वर से खाए.
God doesn't need our bread.
और परमेश्वर को हमारा रोटी नहीं चाहिए.
That bread was there to show that God is providing for us.
ये रोटी इसलिए रखा जाता था कि परमेश्वर हमें रोटी दे रहा है.
What is he providing?
और वो किस लिए दे रहा है?
The bread of life.
वो क्या दे रहा है कि जीवन का आहार दे रहा है?
It represents Jesus Christ.
और ये यीशु को ही दिखाता है.
On the other side of the holy place is the altar of incense.
और पवित्र स्थान के सामने वो एक धूप वेदी था.
The priests daily would take coals from the brazen altar.
और जो याजक था वो बाहर जो पीतल का वेदी वहां से सब वो कोल्स अंगार को लेके उधर जाता था.
Where the fire was not allowed to go out.
और लेकिन वो जो आग वो बाहर नहीं जाना चाहिए.
And they would take them in and they would place them on the small altar of incense.
और उसको लेके वो धूप वेदी में डालता था.
Showing that any prayer that goes up to God has to go through the redemption found in Christ.
इसका मतलब यही दिखाता है कि जो मसीह के द्वारा मुक्ति पाए लोग उनके प्रार्थना ही जाएगा अंदर
and they would place incense on those coals.
और वो अंगार के ऊपर वो लोग कुछ धूप को डालते थे
to represent the prayers of the people to God.
और ये दिखाता है कि मसीह के लोगों का प्रार्थना यही है
see, our priest intercedes for us.
और हमारा जो याजक है हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं
and then there was the holy of holies.
उसके बाद महापवित्र स्थान आता है
Only the high priest is allowed in there once a year.
और साल में एक बार ही महायाजक को अनुमति मिलता था अंदर जाने के लिए
And what's in there?
और जब वो जाता था
the Ark of the Covenant with the mercy seat.
और वो नियम का वाचा का संदूक पा वो दया के सिंहासन के नीचे
There is no light.
और वहाँ पे कोई भी उजियारा ज्योति नहीं है
the only tiny little glow is when the priest brings a censer that's carrying a coal from the altar and incense from the altar of incense.
और जब वो ये महायाजक वो धूप लेता था और जाता था वहां से कुछ चकमक दिख रहा था और कुछ नहीं उसके अलावा वहां पर कुछ लाइट नहीं था
Think of Psalm 119 where he says thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
सोचिए वचन संहिता 119 का 105 कैसे लिखा जाता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए और मेरे उजियारा है थैंक यू
And so he goes to the mercy seat and he applies the blood.
और वो दया के सिंहासन के पास जाता था और खून को वहाँ पे अप्लाई करता था.
That's the pattern of the tabernacle.
और यही हो नमूना है आवास की तंबू का.
The mercy seat is our savior.
और जो दया का आसन है वो हमारा उद्धारकर्ता ही है.
He's our high priest.
वो हमारे महायाजक हैं.
And so although the pattern was made after what was shown in the heavens.
और जो स्वर्ग से जैसे दिखाया गया था मूसा को वैसे जैसे बनाया गया वो जो आवास की तंबू
the heavens are different.
लेकिन स्वर्ग का तंबू कुछ अलग
You can see it in Isaiah 6. We won't turn there.
और आप यशायाह 6:6 देख सकते हैं लिख सकते हैं इसे
But Isaiah comes in and he sees the temple.
और यहाँ पे यशायाह आता है और मंदिर को देख पाता है
And he sees the doors are open.
और देख रहा है कि वहाँ का द्वार खुल रहा है
And what does he see?
और वो क्या देख रहे हैं
He sees the throne.
और वहाँ पे वो सिंहासन को देख रहे हैं
He sees the mercy seat.
वहाँ पे वो दया का आसन को देख रहे हैं
There is no table of showbread.
और वहाँ पे वो मेज के रोटी का टेबल नहीं है
There is no altar of incense.
और वहाँ पे धूप का वेदी नहीं है
There is no lampstand.
वहाँ पे दीप का वृक्ष नहीं है
Why?
क्यों?
Because the one seated on the throne is all of it.
क्योंकि जो व्यक्ति बैठा हुआ है सिंहासन पर वो ही सब कुछ है.
He is the light of the world. He is the bread of life.
वो जीवन का ज्योति है. वो हमारा जीवन का आहार है.
And he is our high priest who intercedes for us constantly on the throne.
और वो सिंहासन पे हमारे लिए हमारा महायाजक के बैठे हुए हमें हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर रहे हैं.
He is all in all.
वो सब में सब है.
And so there's no separation between an outer court and a holy place and a holy of holies.
इसीलिए बाहरी प्रांगण और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में और कोई भिन्नता नहीं.
Because of the presence of God there, all of it is the holy of holies.
क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति चारों ओर फैल गया है.
And He has torn the veil in two so that we have access.
और वो पर्दा को चीर दिया है ताकि हम लोग अंदर जा सके.
That's what the writer of Hebrews is trying to get through to us.
और यही इब्रानी की लेखक हमें सिखाना चाहते हैं
Your faith is seeing Jesus Christ seated upon the throne.
आपका विश्वास हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह दया का सिंहासन में बैठे हुए हैं
Not with the eyes in your head.
और आपके ये सर पर जो आंख है उसी के द्वारा नहीं
But with eyes of faith.
परंतु विश्वास की आंखों के द्वारा
Understanding what it is he's accomplished.
और समझ गए हैं कि उन आप वो आपके लिए क्या क्या कर चुके हैं
Understanding that he's accomplished our redemption.
और ये समझना जरूरी है कि वो हमारे उद्धार को मुक्ति को कर दे चुका है
So that we not only are allowed but are invited into the holy of holies.
और ताकि हमें खाली जाने के लिए अनुमति नहीं मिली परंतु हमें स्वागत किया गया उसके पास जाने के लिए
Before the high priest could only go there once a year.
और जो महायाजक पृथ्वी में जो तंबू था साल में एक बार उसको अनुमति मिलता था जाने के लिए.
You and I are invited there any time of day or night.
परंतु आप मुझे वहाँ पे जाने का हमेशा अनुमति मिलता है चाहे वो दिन हो रात हो.
And when we go to see him face to face.
और जब हम जाते हैं उसे आमने सामने देखने के लिए.
Regardless of whether it's through his return or our death.
और हो सकता है वो जब तक ना आए और हम मर जाए.
We will be dwelling in the holy of holies forever.
और हम वही महापवित्र स्थान में हमेशा रहेंगे उसके साथ.
Because we'll be dwelling with our Savior.
क्योंकि हम हमारे उद्धारकर्ता के साथ रहेंगे.
It's a glory that he's showing us.
और ये एक महिमा है जो हमें वो दिखा रहे हैं.
What would you think of a high priest who just sat down and put his feet up?
और आप कैसे सोच रहे हैं कि वो महायज्ञ ऐसे बैठता बैठा है और अपने पांव में खड़ा होकर देख रहा है.
You brought your sacrifice. Well, what are you doing? Why aren't you helping me?
और आप sacrifice बलिदान को लाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे सहायता क्यों नहीं करते, बलि क्यों नहीं चढ़ाते?
But Jesus Christ is our high priest forever.
परंतु यीशु मसीह हमारे लिए एक अनंत कालीन महायाजक हैं.
And he offered that one sacrifice.
और वो एक ही बलिदान दे दिए.
And it's important to understand that the word of his power keeps all things together.
और इसलिए हमें ये भी समझना है कि वो सामर्थ्य वचन के द्वारा वो सारे चीजों को धारण किए हैं.
And every moment of eternity, the word of his power is keeping our redemption sure.
अनंत कालीन का हर घड़ी, एक घड़ी उसके वचन के सामर्थ्य द्वारा पकड़ा गया है.
How could I be responsible for my redemption?
और मैं कैसे उत्तरदायी हूंगा मेरे मुक्ति के लिए?
10,000 years if there were such a thing in eternity.
और 10,000 साल पहले एक अनंतकालीन समय था, उसे अनंतकालीन समय कहा जाता है.
I'd still be responsible for my redemption.
और फिर भी मैं मेरे मुक्ति के लिए उत्तरदायी हूँ.
How do I have confidence of what anything's going to be like in 10,000 years if I'm the one that is the security of it?
अगर मुझे नहीं पता कि मैं कितना दिन तक जिंदा रहूंगा तो मैं कैसे उत्तरदायी होऊंगा कि जो चीज को मैंने नहीं देखा उसके लिए देखूं?
But we notice back in chapter 7 that he is surety of the new covenant.
परंतु हम 7 अध्याय में देखते हैं कि हमारे वो नई वाचा के लिए ये दृढ़ है, अटल है.
He is the one that has secured my redemption forever.
और वो ही वो व्यक्ति है जो हमें मुक्ति दिया है, वो अटल है वो.
And that forever he will hold together my redemption in his hand.
और वो हमेशा के लिए अटल रूप में वो मेरे मुक्ति को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं.
So that 10,000 years from now, if such a thing existed,
अगर कोई ऐसा चीज है जो 10,000 साल पहले वो था,
he is interceding for me by his existence.
और होगा वो अभी भी मेरे लिए वो मध्यस्थी प्रार्थना कर रहे हैं.
In that day, I won't need him to intercede for me in the circumstances of this life.
और अभी जीवन की परिस्थिति जो हो रहा है उसी दिन ऐसा नहीं होगा कि ये परिस्थिति के लिए मैं उसे कहूंगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो आप.
I won't need him to help me handle troublesome family members.
और मेरे परिवार लोगों के द्वारा जो ताड़ना मेरे ऊपर आ रहा है मैं तभी नहीं कहूंगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो.
Or troublesome co-workers or neighbors.
और जो हमारे पड़ोस में रहते हैं उनके साथ जो समस्या है उनको मैं नहीं कहूंगा कि उसी दिन उसको कि मेरे लिए प्रार्थना करो.
I won't be focused about where is my daily bread coming from.
और मैं वहाँ पे मेरा फोकस नहीं डालूंगा कि कहाँ से मेरा डेली रोटी आ रहा है.
Or you wake up in the morning and your head hurts or your knee is so bad you can't walk.
और मैं सुबह ऐसे वह नहीं उठूंगा जहाँ पे मेरा घुटना अभी दर्द हो रहा है फिर उठने के लिए लेकिन मुझे उठना है ऐसे.
But if there were such a thing as a day in eternity,
लेकिन ऐसा एक दिन है जो अनंत कालीन का दिन होगा.
I need my high priest to intercede for my redemption.
मैं मेरे महायाजक हमेशा मेरे लिए मेरे मुक्ति के लिए वो हमेशा मध्यस्थी प्रार्थना कर रहे ऐसा चाहूंगा मैं.
Because it doesn't matter how many years you want to add on to that time.
और ये हो सकता है कि कितना दिन लगेगा आपको वहां पे जाने के लिए आप विश्वास करेंगे.
Every one of those days, you will be just as dependent upon Christ as you are today.
परंतु हर उतना दिन तक हर दिन आपको आज जैसे यीशु पर विश्वास और भरोसा कर रहे हैं उसी दिन तक आपको विश्वास और भरोसा में रहना ही है.
Because it is only through His sacrifice.
क्योंकि ये संभव हुआ उसी के बलिदान के ही द्वारा.
And through Him exercising the word of His power on our behalf.
और हमारे लिए वो अपने सामर्थ्य वचन में जैसे सारी चीजों को रखा हुआ है.
We can exist.
इसीलिए हम रह पाएंगे.
That's our great high priest.
ये हमारा महायाजक है.
That's who he is.
और ये वो व्यक्ति हैं.
And that is a glory.
और ये महिमा का विषय है.
It ought to be something that we praise him for.
इसीलिए हमको उसको प्रशंसा देना है.